महाशास्त्र के आधार से पहले अध्याय की चर्चा कल हम यहाँ पूर्ण कर चुके थे और दूसरे अध्याय के अंतर्गत ऑप्शन का भी पांच भावों की चर्चा चल रही थी। इन पांच भावों में पारिणामिक भाव अत्यंत उपयोगी है, लक्ष्य करने योग्य है, क्योंकि जो वस्तु खुद ही स्थिर नहीं है उसके लक्ष्य से उपयोग कैसे स्थिर होगा। स्थिर चीज के लक्ष्य से उपयोग स्थिर होता है, जो खुद स्थिर नहीं हो उसके लक्ष्य से उपयोग स्थिर नहीं हो सकता। स्विंग हो, झूल रहा हो, वो जो झूला झूल रहा है इधर से उधर, हमने कहा उस झूलते हुए झूले पर ध्यान केंद्रित करो, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, निगाह ऐसे ऐसे जाती है झूल रहे। फिर हमने कहा कि ये बल्ब है उस पर केंद्रित करो तो हो जाता है। तो जो चीज स्थिर होगी उस पर हमारा चित्त स्थिर हो सकता है, जो वस्तु खुद स्थिर नहीं है उसके ऊपर हमारा चित्त भी स्थिर नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रैक्टिकल है स्थिति। ऐसे हम यहाँ कह रहे हैं जो पर्याय हैं वो पर्याय अस्थिर है, औपक्षमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोक्षमिक भाव, औदयिक भाव, ये चारों भाव पर्याय रूप है, उस पर हमारी दृष्टि स्थिर नहीं होती। और पारिणामिक भाव स्थिर है, इसलिए स्थिर भाव की दृष्टि से उपयोग स्थिर होता है और स्थिर पद की प्राप्ति होती है, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। माने यदि आप ये चाहते हैं कि स्थिर पद की प्राप्ति हो, परमानेंट पद की प्राप्ति हो, तो क्या करें बोलो? उसके लिए पारिणामिक भाव का अवलंबन ले। यदि पारिणामिक भाव का अवलंबन होगा तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होगी। फिर जितने सिद्ध परमात्माएं पारिणामिक भाव के लक्ष्य वाले हैं, जितने अरंत परमात्माएं पारिणामिक भाव का अवलंबन है, पारिणामिक भाव मतलब त्रिकाल, पारिणामिक भाव मतलब अनचेंजेबल, पारिणामिक भाव मतलब हमेशा एक रूप रहने वाला, पारिणामिक भाव में परिवर्तन नहीं होता, तो पारिणामिक भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। चार भाव पर्याय रूप होने से लक्ष्य करने योग्य नहीं है और पारिणामिक भाव द्रव्य रूप होने से वो लक्ष्य करने योग्य, वो अपनाने योग्य है। तो ये सारी बातें कल हमने यहाँ की है, बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा थी और पारिणामिक भाव के तीन भेद बतला दिए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तीनों में माने कोई भी पारिणामिक भाव हो उसमें कर्म का उदय नहीं होता, कर्म का उपशम नहीं होता, कर्म के क्षय से वो भाव नहीं होता और कर्म के क्षयोपशम से नहीं होता। जो उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना हो वो पारिणामिक भाव है। ठीक है, तो ऐसे पारिणामिक भाव की चर्चा अपनी यहाँ हुई। अब देखो जीव का भाव बतला रहे हैं, जीव का लक्षण बतला रहे हैं, जीव की पहचान का चिन्ह बतला रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हैं, जो लोग कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। और जिसको सिर्फ वैसे ही समझ लो आप, जैसे कहते हैं ना हमारे चालू भाषा में कहते हैं हम लोग इंडिया में, लच्छेदार भाषण सुनना हो ऐसे ही, तो फिर उनके लिए नहीं, चलो फिर ठीक है, आप तो दो चार किस्से सुनाओ, कहानियां सुनाओ, इधर उधर की बातें सुनाओ, तो फिर उसमें मजा आएगा। तो ये सीखने की बातें हैं। सबसे पहला सूत्र यहाँ दे रहे हैं, उपयोगो लक्षणम, आठ नंबर का सूत्र है दूसरे अध्याय का, चैप्टर सेकंड, सूत्र नंबर एक, उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, उपयोग है लक्षण, क्या अर्थ हुआ? उपयोग लक्षण है, किसका लक्षण है उपयोग? बोले जीव का। चर्चा जीव की चल रही थी, जितनी चर्चा अभी तक चल रही है वो सारी चर्चा जीव की चल रही है। देखिए, सात तत्वों का वर्णन किया है सत्वार सूत्र में, जानते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले, ठीक है। पांचवा अध्याय अजीव तत्व का वर्णन करने वाला, आश्रव के लिए, छठा और सातवां, बंद के लिए आठवां, और नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा, और दसवें अध्याय में मोक्ष। तो दस अध्यायों में सात तत्वों का वर्णन है, ठीक है। अब यहाँ एक जीव तत्व का वर्णन चलेगा चार अध्यायों तक, दो अध्यायों में तो जीव की चर्चा विस्तार से है, तीसरे और चौथे अध्याय में ज्योग्राफी की चर्चा है, तीसरे में भूगोल की चर्चा है, और चौथे में चर्चा है स्वर्ग आदि की। चलो, उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण है, पाठ चलते हैं थोड़ा सा। उपयोगो लक्षणम, उपयोग, उपयोग क्या होता है? ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं कि सर्विस, सर्विस वाले हैं यहाँ कोई? अच्छा, सर्विस वाले, तो जो भी सर्विस वाले हैं उनको यहाँ बतला रहे हैं कि ये आपका बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? जानना, देखना, उपयोग। बोलो, ये उपयोग, जानना और देखना, ये उपयोग है, और ये उपयोग हमारा लक्षण है। इसका मतलब जीव की पहचान जानने देखने से होती है, जानेगा और देखेगा वो जीव है। कितने भेद हैं उसके? आगे सूत्र दिया, आगे बढ़ो। स द्विविधोश्च चतुर्भेद है, स द्विविधोश्च चतुर्भेद है, वापस देखो, स द्विविधोश्च चतुर्भेद है, द्विविधोश्च चतुर्भेद है। स मतलब वह है, द्विविध मतलब दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार का है? उपयोग, उपयोग दो प्रकार का है। उपयोग मतलब यूज भी होता है, किसी चीज को यूज में लेने को भी उपयोग कहते हैं, यहां वो नहीं। जीव का जो लक्षण है उपयोग, नहीं, जीव की जो पहचान का चिन्ह है उपयोग, वो उपयोग द्विविधो दो प्रकार का है, ठीक है। फिर कहा द्विविधो के बारे में, कहा अष्ट चतुर्भेद है, अष्ट चतुर्भेद है, आठ और चार भेद वाला है। तो माने वो उपयोग कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, आठ भेद और चार भेद है उसके। क्या मतलब कि उपयोग के दो, ज्ञान और दर्शन। बोले ज्ञान के आठ भेद और दर्शन के चार भेद। क्या था? ज्ञानोपयोग आठ भेद वाला और दर्शनोपयोग चार भेद वाला, ठीक है। अब चतुर्भेद है मतलब चार भेद वाला, चतुर के पहले अष्ट और भी आए, आठ भेद भी है। इसमें नाम नहीं बतलाए हैं यहाँ पर, नाम आप लोग जानते हैं, पर जानते हैं ना, नाम नहीं जानते। ज्ञानोपयोग के आठ भेद कल तो बताए थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनेपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुशुत और कुअवधि। ये आठ प्रकार का ज्ञानोपयोग है। दर्शनोपयोग चार प्रकार का, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग, केवल ज्ञान नहीं। दर्शन की चर्चा चल रही है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये होते क्या है ये? ये चक्षु दर्शन क्या होता है? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं, और चक्षु को छोड़कर बाकी की चारों पांचों इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, उससे पहले जो दर्शन हुआ वो अचक्षु, चक्षु को छोड़कर वो अचक्षु दर्शन उपयोग है। अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो अवधि दर्शन उपयोग है, केवल ज्ञान के साथ में जो सामान्य अवलोकन होता है वो केवल ज्ञान उपयोग है, चलो केवल दर्शन उपयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह जैसी मैं बात कह रहा था ना, क्या सबको तो जाना निज को न जाना, तो क्या क्या जाना सबको? सुबह कह रहे थे ना कि सब कुछ तो डिटेल करके बतलाओ। किरमत जी ने कहा था कि बीजू कहिए केट लू, ये कुछ तो विचार करके बतलाओ साहब, थोड़ा तो विस्तार करो। कि विस्तार क्या करूं मैं, विस्तार होते ही जवाब हो जाता है। और उमा स्वामी आचार्य थोड़े विस्तार में चले गए, तो विस्तार में चले गए तो क्या समझाने लग गए, जीव को समझाना है। अब देखो, एक तो उपयोग लक्षण हम समझा दो तो संक्षेप में हो गया, ज्ञान मात्र आत्मा बस कैसा है वो लक्षण हम बात खत्म। के लिए थोड़ा विस्तार से बताओ, विस्तार बताओ तो कहेंगे अब क्या क्या बतलाया। सूत्र देखो आगे, संसारिणो मुक्ताश्च, जानने के लिए है ये सब। देखिए इन बातों की खबर भी होनी चाहिए, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि तो उपयोग लक्षणम से होगी, प्रयोजन की सिद्धि तो पारिणामिक भाव से होगी। इसलिए पारिणामिक भाव जैसे समझ में आवे वो अपने को काम करना चाहिए। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। इंपॉर्टेंट बात बतलाऊं, जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। लेकिन सुनो, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। तो जो लक्षण होता है वो प्रत्येक अवस्था में रहता है, तो चाहे संसार अवस्था हो या मुक्त अवस्था हो, उपयोग लक्षण होगा। समझ में आ रही है बात? तो जीव कैसे पकड़ में आएगा, संसार अवस्था से या मुक्त अवस्था से? कि नहीं, ये तो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में रहने वाला एक उपयोग है, उससे जीव पकड़ में आता है। माने जीव को यदि पकड़ना है हमारे को, जीव की पहचान करनी है, आत्मा की पहचान कैसे होगी? उपयोग लक्षण से होगी। इस उपयोग लक्षण को पकड़ के रखना, उपयोग लक्षण को यदि पकड़ के रखोगे तो कितना भी आगे तक जाओ, एक बार खूंटे से बांध दिया ना, अब कितना भी जाए लेकिन बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है। तो उपयोग लक्षणम, ये उमा स्वामी आचार्य ने बांध दिया, ये डबल प्रोटेक्शन है। पहले पारिणामिक भाव का था, पारिणामिक भाव की चर्चा करने के बाद में उपयोग लक्षणम कह दिया, उपयोग लक्षण वाला है, इसका मतलब डबल प्रोटेक्शन, कहीं दूर हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में होता है, लेकिन जीव के पारिणामिक भाव की चर्चा करते हैं तो उपयोग लक्षण उसका पारिणामिक भाव। परिवर्तनशील उपयोग नहीं, पर्याय वाला उपयोग नहीं, उपयोग मात्र। अभी संसारिणो मुक्ताश्च कहने के बाद में संसारी और मुक्त दो तरह के जीव हैं। शिष्य ने पूछा, ये तो अर्थ समझ में आ गया ना, संसारी और मुक्त। संसारी कौन से गुणस्थान तक? 14वें गुणस्थान तक, 12 कह दो, अरहंतों को मुक्त कह दो आप, लेकिन अरहंतों की अभी तो आयु कर्म है, चार घातिया कर्म है, अभी तो उनके आसिद्धत्व नाम का औदयिक भाव है, औदयिक भाव है भी अरहंतों के, इसलिए वो संसारी है। तो मुक्त कौन है? तो सिद्ध भगवान मुक्त जीव है। और वैसे यदि दूसरी अपेक्षा से बात करें तो चौथे गुणस्थान वाला भी मुक्त है। मुक्त चार प्रकार के होते हैं, और जब मुक्त जीव चार प्रकार के, कौन कौन से? दृष्टि मुक्त, दृष्टि मुक्त, मुक्त हो गए ना, मुक्त हो के आए हैं आज, दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त के बाद में दूसरे नंबर पर है मोह मुक्त। दृष्टि मुक्त, दृष्टि मुक्त है चौथे गुणस्थान में, दृष्टि मुक्त। फिर होता है मोह मुक्त, मोह मुक्त होता है दसवें गुणस्थान के अंत में, दसवें के अंत में मोह मुक्त। पीछे रखे और रखे, पहला कौन सा बतलाया डॉक्टर साहब? दृष्टि मुक्त। दूसरे मुक्त कौन है? मोह मुक्त। नंबर तीन जीवन मुक्त, जीवन मुक्त। ये होते हैं बारहवें गुणस्थान में जीवन मुक्त, माने अब उनको कभी मौत नहीं आएगी, जीवन मुक्त। और फिर होते हैं देह मुक्त, देह मुक्त। वो कौन है? वो सिद्ध भगवान है। देह क्षता जैनी दशा, ये कौन से मुक्त है? ये चौथे गुणस्थान वाले पहले नंबर के मुक्त है, दृष्टि मुक्त। देह है, देह से मुक्त नहीं है वो, देह क्षता देह की मौजूदगी में भी, जिनकी दशा देह से अतीत वर्तती है, ऐसे कौन ज्ञानी? आप बतलाओ मेरे को, आखिर ऐसा क्या है प्रथमानु योग में जो गीत गाए गए हैं, ऐसा क्या हो गया? भरत चक्रवर्ती के गीत गाए गए, छह खंड की विभूति के बीच में रहता है, रामचंद्र जी के गीत गाए गए हैं, हनुमान जी के, कहीं किसी सती अंजना के, कहीं मनोरमा के, कहीं सेठ सुदर्शन के, इन इन सबकी महिमा क्यों? कहीं यमपाल चांडाल की महिमा गाई है, आखिर क्यों? आखिर क्यों? कि सुनो, वो अवस्था पूज्य नहीं है, लेकिन जिस अवस्था ने पारिणामिक भाव का अवलंबन किया वो अवस्था पूज्य हो गई। आखिर ऐसा क्या था उनके लाइफ में जिसकी वजह से उनको इतना सम्मान मिला? हाँ, अरे कितने उदाहरण हैं, अनगिनती एग्जाम्पल है प्रथमानु योग में, उठा करके देखो आप, क्यों पूज्य हो गए, क्यों देवों ने पुष्प वृष्टि की, क्यों उनकी जय जयकार होने लगी, आखिर कारण क्या है? क्यों अग्नि का जल कर दिया, क्यों सूली का सिंहासन कर दिया, और क्यों नाक का हार कर दिया? कितने उदाहरण मिलते हैं, क्यों हो गया ये सब? किस चीज की महिमा है? कि सुनो, महिमा स्वभाव की है, महिमा पारिणामिक भाव की है। उस पारिणामिक भाव की महिमा को जिस पर्याय ने समझा, उस पर्याय की भी जय जयकार होने लगती है। महिमा तो पारिणामिक भाव की है, उस पारिणामिक भाव की महिमा को समझकर जो पर्याय अवलंबन लेती है, उस पर्याय की जय जयकार होने लग जाती है। जय हो, जय हो, क्या स्वरूप है भाई, महिमा तो महिमा हो चुकी है। अब बोलो तो स्वभाव की महिमा करना सीख लो, जिसे अपने स्वभाव की महिमा है, तीन लोक में सौधर्म इंद्र जैसे लोग उसके चरणों में आकर के उसकी महिमा गाते हैं, जिसे स्वभाव की महिमा है। और जिसे अपने स्वभाव की महिमा नहीं है, तो कहीं भी चले जाए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। ये चक्कर है पारिणामिक भाव का, देख लो आप। और सबसे बड़ी रजत की बात यह है कि जिस पारिणामिक भाव की महिमा लानी है, वो पारिणामिक भाव किसी दूसरे में नहीं है, वो मैं हूं। ये गजब है। मने मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। एक ऐसी मोह की महिमा है, ये दर्जन मोह की ऐसी महिमा है कि जिसकी वजह से मुझे अपनी महिमा नहीं आती है, अपने पारिणामिक भाव की महिमा नहीं आती है। चाहता तो है अपनी महिमा, एक चाहता तो है कि मुझे यश मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे मान मिले, लेकिन किसको मिलता है? जिसने अपने स्वभाव की कीमत की उसे मान अपने आप मिलता है, और जिसने अपने स्वभाव की कदर नहीं की उसने अपनी ही कदर नहीं की, अपने स्वभाव की कदर नहीं की, हमारी दृष्टि में उसका अपमान होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उस स्वभाव की महिमा आना तो बहुत दूर, ये अपमान करता है। अपमान कैसे करता है? जिनको आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती है, जिन्हें कारणामी भाव की चर्चा पसंद नहीं आती है, जिनके सामने कारणामी भाव की चर्चा हो और वो कहे अरे यार ये तो ये क्या है फिर, आत्मा ही आत्मा क्या कर रहे हो आप? आपको पता है आपके द्वारा कहे गए इस एक वाक्य का फल क्या निकलेगा? अनंत काल तक निबोध में बिताएगा, अनंत काल तक, एक समय का पाप अनंत काल तक निबोध में। बनारसी दास जी ने नाटक समयकार में लिखा है, सम्यक दर्शन की महिमा गाते समय, महिमा गाते हुए ऐसा लिखा, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। सम्यक दर्शन की महिमा, कैसी महिमा है? एक समय का सम्यक दर्शन, एक समय के लिए स्वभाव दृष्टि, और क्या लिखा उन्होंने, अनंत काल तक सिद्धारण में जाकर के विराजमान होगा। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, लेकिन सुनो मैं उल्टा कहता हूं, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएंगे। एक समय की चूक है भाई साहब, एक समय का अपराध है, को पता नहीं है समय समय कैसा अपराध हो रहा है। एक समय की पर्याय का अपराध, 70 कूड़ा कूड़ी सागर का बंध दर्शन मोहनी का, एक समय की चूक का फल आप सोच नहीं सकते हो, एक समय के भोग के परिणाम का फल असंख्यात असंख्यात वर्षों तक नरक की वेदना है, एक समय के भोग के परिणाम का फल। साधारण बात नहीं कह रहा हूं, कैलकुलेशन से बतलाता हूं आपको, मैं बोर्ड पर अभी भी कैलकुलेशन बतलाने लगू ना आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आखिर वस्तु स्थिति क्या है, बोलो ऐसी है हालत। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती नाम सुना है आपने, 12 चक्रवर्तियों में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था। एज थी उसकी 700 वर्ष की, 700 वर्ष की उम्र थी उसकी, 7वें नरक में सड़ रहा है अभी। क्या चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं, 7वें नरक में है अभी, 33 सागर की आयु भुगत रहा है, 33 सागर। अब 33 सागर के वर्ष बनाओ, नहीं 33 सागर के मत बनाओ, ऐसा करो 33 सागर को तो सागर रहने दो, 700 वर्ष की लाइफ थी ना उसकी, चक्रवर्ती में बिताया ना उसने, भोगों में बिताया ना समय, 700 वर्ष के दिन बनाओ, बना सकते हैं बहुत इजी है, 700 गुना दिन कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया दिन बन गए, जितने दिन बने उनके घंटे बनाओ 24 से मल्टीप्लाई करके, फिर उनके मिनट बनाओ 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बनाओ, कितने सेकंड आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा कितने होंगे, सुनो अब जो आया है ना जितने सेकंड आए हैं, इतने सेकंड का 33 सागर में भाग दो तो आपको लगेगा एक एक सेकंड का फल असंख्यात 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 वर्षों की नरक की वेदना। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें सर्व के भगवान के ज्ञान में जलती है, एक सेकंड अरे इतना फाइट है, अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है ये बोतल एक घूंट बस, इतनी सी तो है, क्या फर्क पड़ता है इतनी सी में, इतनी सी में अरे इतना भाई तो मैंने कौन सा बहुत बड़ा पाप कर दिया, औरों को देखो औरों को देखो, फिर दूसरों की बातें करता है, दूसरों को देख देख करके स्वच्छंद होने की बातें करता है, अरे वो तो नरक में जाएंगे, तू नरक में जाने को तैयार है क्या, उनको तो समझ नहीं है, उनका तो अनंत संसार है, उन्होंने तो मुक्ति की चर्चाएं सुनी नहीं है, तूने तो सुनी है ना, वो तो जानते ही नहीं है मुक्त स्वभाव क्या होता है, हम सुन करके भी जानकर भी अनजान हो रहे हैं, नादान बन रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, कौन समझाएगा। जब पड़े पाप करने का उदय आता है ना महेंद्र भाई, ऐसा रोता है, बहुत रोता है, बिलखता है, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि बेटा तेरा ही किया हुआ है, किसी और का किया हुआ नहीं है, हमने किया था, जब सुनाई नहीं देता, जब दिखाई नहीं देता, जब ऐसे पाप कर्म के उदय आते हैं, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जब हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, ऑपरेशन होते हैं, जब चलते चलते बेहोश हो जाता है, उठा बैठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, ये जो परेशानियां जब कहीं होती है, तो ये कहता है मैंने ऐसा क्या किया है। जब आपका बिजनेस में लॉस पड़ जाता है, जब आपके 25-50 हजार डॉलर कोई लेकर के वापस नहीं लौटाता है उधार लेकर के, वो कहता है मेरे को कब दिए थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वहां नुकसान हो गया, यहाँ नुकसान हो गया। सुन भाई, तुझे चुकाना पड़ेगा, तेरा ही किया हुआ है, किसी और का फल किसी और को नहीं मिलता है, स्वयं का फल ही स्वयं को मिलता है। इसलिए ध्यान क्या रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना, पारिणामिक भाव का लक्ष्य कभी मत छोड़ना, उपयोग को लक्षणम इसको पकड़ लो आप, उपयोग को लक्षणम जैसे पकड़ लिया तो फिर ना मैं बिजनेस करने वाला, न मैं खाना बनाने वाला, न मैं नहाने धोने वाला, न मैं राग द्वेष करने वाला। उपयोग को लक्षणम साथ में लेकर के बोले, अब उपयोग को लक्षणम की जो खुराक है या उपयोग को लक्षणम की जो जड़ी बूटी है उसको जेल में रखकर अब उमा स्वामी आचार्य सैर करा रहे दुनिया की। अब चलो देखो, संसारिणो मुक्ताश के पहले नहीं बताया, त्रस स्थावर, पृथ्वी का एक जल का एक आदि के भेद, दो इंद्री चार इंद्री आदि के भेद प्रभेद, ये सब पहले नहीं बतलाये उमा स्वामी आचार्य ने। पहले उपयोगो लक्षण हम कह करके यहाँ आपको पहले उपयोग लक्षण को पकड़ाया। अब जिसने उपयोग लक्षण को पकड़ लिया उन्हें अब बढ़ो आगे, बढ़ो कहा, दसवें सूत्र में, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, माने संसारी भी जीव होते हैं और मुक्त भी जीव होते हैं, तो मुक्त जीव तो उपयोग लक्षण वाले होते हैं, तो संसारी भी, हाँ जैसे मुक्त वैसे संसारी, कोई फर्क नहीं। फिर आगे देखो, संसारी जीवों की चर्चा कर रहे हैं, समनस्का अमनस्का, समनस्का अमनस्का, समनस्का अमनस्का, तो मने सहित, मनस्का मन सहित, और मने नहीं, मनस्का मन से रहित, मने संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक मन सहित वाले, एक बिना मन वाले। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, मन वाले और बिना मन वाले, ठीक है, क्लियर। संगी जीव और असंगी जीव। अब जैसे ही उमा स्वामी आचार्य ने बात कही, शिष्य कहता है ये संसारी जीव के भेद है, हमने तो कुछ और ही पढ़े थे, संसारी जीव दो प्रकार के होते, कुछ और पढ़ा था। यहाँ हाँ तुझे सुना होगा, संसारिण त्रस स्थावरा, आगे वाला सूत्र है, संसारिण त्रस स्थावरा, संसारिण त्रस स्थावरा, संसारिण त्रस स्थावरा, ठीक है। संसारी जीव दो प्रकार के हो गए, त्रस्त जीव और स्थावर जीव, पहचानते हैं ना, त्रस्त जीव कौन से होते हैं, स्थावर जीव कौन से होते हैं, कुछ खबर है त्रस्त जीवों की और स्थावर जीवों की, अभी समझाएंगे, मेन खबर है तो चिंता मत करो, उमा आचार्य की शरण में आए हैं, ये सब समझाएंगे अपने को, नहीं आता है बस इतना सा स्वीकार करो, और सीखना है इसके लिए तैयार रहो, तैयार है ना, सब तैयार है ना, पक्का, किस किस ने मांगा महेंद्र भाई से, महेंद्र भाई यहाँ सामने तो सब हाँ भरते, हम तैयार हैं, यहाँ सब कहते हैं हमें सब सीखने के लिए तैयार हैं, और फिर बाद में सब मालूम चल जाता है क्या है चक्कर। चलो, संसारेण त्रस्त स्थावरः, संसारी जीव त्रस्त और स्थावर दो तरह के होते हैं संसारी जीव, ठीक है ना, मतलब जितने भी संसार में हैं, मुक्त जीव तो सिद्ध भगवान होते हैं, सिद्ध परमात्मा वे मुक्त जीव हैं, और बाकी जितने संसार बचाने हैं, मतलब जो सिद्ध भगवान नहीं है, अगर वे सिद्ध, वे सब क्या हैं? या तो त्रस होंगे या स्थावर होंगे। ठीक है, बोले ये त्रस स्थावर क्या है, नए शब्द सुने हमने। त्रस क्या होते हैं, स्थावर क्या होते हैं? बोले चिंता मत करो, आगे वाला सूत्र पढ़ो। प्रतिव्यक्त तेजो वायु, प्रतिव्यक्त तेजो वायु, प्रतिव्यक्त तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। वॉल्यूम तेज रख करके बोलेंगे तब, तब तो ऐसा लगना चाहिए कि मेरी ही आवाज यहाँ हॉल में दूसरे की नहीं। प्रतिव्यक्त तेजो वायु, प्रतिव्यक्त तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः, वनस्पतयः स्थावरः। देखो क्या कहा, प्रति, प्रति मतलब पृथ्वी। ये किस क्या बतला रहे हैं, लास्ट वर्ड देखो इस सूत्र का, 13 नंबर सूत्र का लास्ट वर्ड स्थावरः। पहले संसारी जीव के दो भेद कहे थे, कौन कौन से? त्रस और स्थावर, त्रस और स्थावर। अभी स्थावर बतला रहे हैं पहले, कि स्थावर क्यों बता रहे हैं पहले, त्रस और स्थावरों में त्रस बताना चाहिए ना, त्रस पहले था कि नहीं नहीं, स्थावर को एक सूत्र में शॉर्ट में निपटा करके फिर त्रस की चर्चा करते रहेंगे। आप लोग त्रस है कि स्थावर है? त्रस है पक्का। और वो समनस्का अमनस्का में से कौन है? पीछे सूत्र था ना, मन सहित और बिना मन वाले, तंगी है, पता है पक्का। तंगी कौन होते हैं? जिसका मन होता है, पांच इंद्रिय मन होता है, वो होते संगी। चार इंद्रिय संगी हो सकता है? क्या कह रहे हो मनोज भाई, पांच क्या कर रहे हो आप? हाँ तो नहीं है तो ऐसा मत बोलो आप, अब जो मालूम है वही बोलो, नहीं मालूम मत बोलो, नहीं तो पता हरीश भाई कहेंगे कि पंडित जी आपके प्रवचन में हमने सुना था कि वो चार इंद्रिय की संगी होता है। फिर मैं कहूंगा कब सुना था, मैंने तो नहीं सुना है कि नहीं सुना, तो आपके ही प्रवचन में था। अरे भाई मेरे प्रवचन में सुना था लेकिन मैंने नहीं सुनाया था। पांच इंद्री, पांच इंद्री में दो होते हैं, पहनी और असैनी, तंगी और अतंगी। तंगी माने मन वाले, हम सबके मन है। तंगी वो होते हैं, देखो शास्त्र की परिभाषा बता रहा हूँ, तंगी वो होते हैं जिन जीवों में हित और अहित का विचार करने की सामर्थ्य होती है। क्या वो चक्कर है इसमें? क्या हित और अहित का, चंद्रकांत भाई किसमें हमारी भलाई है और किसमें हमारी बुराई है, क्या चीज हमारे लिए अच्छी है और क्या बात हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसका विचार करने की सामर्थ्य जिसके पास में होती है उसे संगी कहते हैं। बोलो विवेक। अब बताओ पार्टियों में घूमने में हमारी भलाई है या नहीं है? नहीं, नहीं है। तो जब भलाई नहीं है तो घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए? और जाते हैं तो भलाई समझ के जाते हैं कि वैसे ही चले जाते हैं? हित बुद्धि के बिना नहीं जाता है। हिताहित के विवेक के निर्णय की चर्चा चल रही है यहाँ से। भाई साहब आप निर्णय करो आपकी भलाई किसमें है, आप निर्णय करो। ये देह मन वाणी इनका उपयोग सही दिशा में यदि नहीं हुआ तो देह मन वाणी छीन ली जाएगी, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है। आज तक जिन लोगों ने रिद्धियों का दुरुपयोग किया उनसे रिद्धियां छीन ली गई है। ये चक्षु इंद्रिय आपकी रिद्धि है, रिद्धि आप रिद्धिधारी है दिनेश भाई, चंद्रकांत भाई ये रिद्धिधारी है हम लोग। रिद्धियां है हमारे पास में, ये चमत्कारिक रिद्धियां मिल गई है हमारे को। कौन सी रिद्धियां? कि देख देखा हमने और पहचान लिया कि कैसे पहचाना, ये चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य है। बोलो मैंने बताया था एक व्यक्ति आपको टीवी की स्क्रीन पर सफेद दाढ़ी वाला अमिताभ बच्चन, सीधा अमिताभ बच्चन, सफेद दाढ़ी वाला कोई भी हो अमिताभ बच्चन टीवी की स्क्रीन पर, आपने कैसे पहचाना? क्या सुनो, उस व्यक्ति को देखते ही कैसे पहचान लेते हो आप? आपने कैसे याद किया है? ये सब कहाँ है? ये आपकी सामर्थ्य है, ये रिद्धियां हैं हमारे पास में, चक्षु इंद्रिय रिद्धि। इतना ही नहीं, आपके पास में एकदम फोन कॉल बजा, डॉक्टर साहब एकदम फोन कॉल बजा और बोला मैं कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन। वो लोग चलते हैं ऐसे, ऑप्शन देता है वहां, कभी देखा आपने फोनो फ्रेंड का? मेरे को कैसे कॉल किया कि आपके फ्रेंड मेरे सामने हॉट सीट पे बैठे हुए हैं? आप देखा है था आपने? तो कभी आ सकता है आपका भी कोई फ्रेंड आपका नाम दे दे? नहीं हो सकता है, हो सकता है ना? तो आप आवाज सुनते ही पहचान जाएंगे कि नहीं ये कौन बोल रहा है, पहचान जाते हैं। इतनी सामर्थ्य है हमारे में, आवाज सुनकर के हम पहचान लें ये आवाज किसकी है। यहाँ बैठे बैठे कल आप लोग इधर बैठे हुए थे, मेरी तरफ देख रहे थे और पीछे से कुछ आवाज चालू हुई और आपने पहचान दिया कि पीछे तो बारिश शुरू हो गई है। ये रिद्धियां हैं, लेकिन सुनो, चक्षु इंद्रिय रिद्धि इसका दुरुपयोग मत करना, कर्ण इंद्रिय रिद्धि इसका दुरुपयोग मत करना, रत्ना इंद्रिय घन इंद्रिय रिद्धियां प्राप्त हो गई है इनका दुरुपयोग मत करना। क्यों भी इन रिद्धियों का दुरुपयोग किया, न चक्षु मिलेगी न कर्ण मिलेंगे, न सूंघने की सामर्थ्य होगी न चखने की सामर्थ्य होगी, एक इंद्रिय बन जाएगा। बोलो, दयनीय दशा, तरफ आता है किनको देखकर? इनको, प्रति, अप, तेज, वायु, वनस्पति है, सावराहा। सूत्र पढ़ा है मैंने 13 नंबर का, पृथ्वी अप माने जल, तेज माने अग्नि, वायु मतलब एयर, और वनस्पति ग्रीनरी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांच प्रकार के होते हैं स्थावर। ये स्थावर जीव पांच प्रकार के होते हैं, सावधान रहे। स्थावर जीव सबके सब कौन है बेचारे, जिनके जवान नहीं है? ये स्थावर जीव कौन है जो बोल नहीं सकते, जो अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं सकते, जिनमें देखने की सामर्थ्य नहीं है, सुनने की सामर्थ्य नहीं है? एक कैसी हालत है इन एक इंद्रिय जीवों की? अनंत अनंत काल बिताया हमने एक इंद्रिय दशाओं में, अनंत काल बिताया, फिर भी जीव है, जीव तो है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। लेकिन मैंने एक बात कही थी, एक इंद्रिय में स्थावरों में चला गया तो भी, अनंत काल वहां बिताया तो भी, क्या उपयोगो लक्षणम, उसको नुकसान नहीं पहुंचा, उसको पकड़ करके रखो आप, कहीं भी चले जाओ, मेरी निधि तो मेरे में है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। समझ में आती है बात? ये अपनी निधि है, उपयोग लक्षणम, ये अपने में है। चलो आगे बढ़ो फटाफट, द्विइंद्रियादय स्रसाह, द्वि इंद्रिया व्यस्तः, मैंने दो इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय आदि क्या है? तस। अब देखो उमा स्वामी आचार्य के सामने बैठा हुआ शिष्य इतना भूला था, महेंद्र भाई इतना नादान था, वो कहता है अच्छा दो इंद्रिय आदि सब त्रस होते हैं, माने दो इंद्रिय भी त्रस होते होंगे, तीन इंद्रिय भी त्रस होते होंगे, चार इंद्रिय भी त्रस होते होंगे, पंच इंद्रिय भी त्रस होते होंगे, छह इंद्रिय, सात इंद्रिय, आठ इंद्रिय सब त्रस होते हैं ना सारे, दो इंद्रिय आदि सब त्रस है। तो उमा स्वामी आचार्य को आगे बताना पड़ा, अरे छह सात आठ दस इंद्रियों में कहां बढ़ रहा है, पंच इंद्रियां, इंद्रियां पांच ही है। आगे वाला सूत्र लिखा, पंचेंद्रियाणि, पंचेंद्रियाणि क्यों कहने की जरूरत पड़ी क्यों कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि प्रैक्टिकल लगता है हमारे को। ये कहते हैं द्विइंद्रिया देहस्त्रसा, दो इंद्रिय आदि तब भी त्रस होते हैं। फिर कहा पंचेंद्रियाणि, ये पंच इंद्रिय, इंद्रिया पांच ही होती है। अच्छा तुम इंद्रिया भी नहीं जानते हो? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम इंद्रिया क्या होता, इंद्रिया भी नहीं जानता हूं बलावान, उसको इंद्रियों की खबर नहीं है। तो इंद्रिय समझाते द्विविधानी पंचेंद्रियाणि, द्विविधानी पंचेंद्रियाणि, द्विविधानी पंचेंद्रियाणि, द्विविधानी। ठीक है, कुछ लोग जैसे बोल रहे थे वैसे मैं बोलने लग जाऊं ना तब तो पता नहीं क्या होते। अच्छे से बोलो भाई, अच्छे से बोलो। मैं जिसको कह रहा था वो समझ गए, आपको नहीं कह रहा था। पंचेंद्रियाणि द्विविधानी, द्विविधानी पंचेंद्रियाणि का मतलब पांच होती है इंद्रियां, ठीक है। द्विविधानी का मतलब दो विधि है, माने वो पांचों इंद्रियां दो प्रकार की है। नहीं, पांचों इंद्रियों की बात करें, सेंस की जगह जल्दी में स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, ये जो पांच इंद्रियां होती है ना, स्पर्शन छू करके जानते हैं, टच जिससे होता है स्पर्श, वो स्पर्शन इंद्रिय है। रसना, ये रसना इंद्रिय है, टेस्ट से ग्रहण इंद्रिय स्मेल करके जानते हैं, चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय, तो ये पांच प्रकार की इंद्रियां होती है। बराबर ये कह रहे हैं उमा स्वामी, पांचों ही इंद्रियां दो दो प्रकार की होती है, सब दो प्रकार की है, माने द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। अच्छा, द्विविधानी का अर्थ क्या हुआ? दो विधि से उसकी बात समझनी चाहिए, इंद्रियों की, पांचों इंद्रियों की बात दो प्रकार से समझो। कौन कौन से दो प्रकार से? एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। बोले यार पांचों इंद्रिया तो समझ में आ गई कि फाइव सेंस, लेकिन द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय को समझा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, निवृत्त करने द्रव्य इंद्रियम, निवृत्त करने द्रव्य इंद्रियम, निवृत्ति उपकरणे द्रव्य इंद्रियम। अब देखो क्या है ये चक्कर, निवृत्ति और उपकरण फिर नए शब्द हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी नए शब्द आते हैं ना, तो नए शब्द सुनते ही हमारा जो फाइव सिक्स सेंस है वो कहने लगता है कठिन है। ह्यूमन नेचर है, कोई भी नया वर्ड आप सुनेंगे ना तो आपका मन ये कहने लगेगा कठिन है, कठिन बात है, कठिन बात है। अब हमें निर्वृत्ति उपकरण है द्रव्य इंद्रियम, अरे पता नहीं क्या क्या बात है कहने लगे। नहीं नहीं नहीं, सरल सुनो, द्रव्य इंद्रिय दो प्रकार की, क्या था? द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय क्या है? आंख ना कान, ये तो द्रव्य इंद्रिय है, लेकिन दो प्रकार की है। एक को कहा निर्वृत्ति और एक को कहा उपकरण। निर्वृत्ति कहते हैं संरचना को, संरचना वो निर्वृत्ति है, रचना और उपकरण माने तो इंस्ट्रूमेंट है। उपकरण, उपकरण क्या है? साधन, इंस्ट्रूमेंट। अभी जीव जो जानता है वो इंद्रियों से नहीं जानता, अपने उपयोग लक्षण से जानता है। जीव जो भी जानने का काम करता है, ये इंद्रियां जानने में निमित्त होती है, निमित्त है इंद्रियों, इंद्रियां जानने में निमित्त है, लेकिन इंद्रियां जानती नहीं है। जानता कौन है? ज्ञान, उपयोग से जानते हैं। लेकिन एक बात है, ये निमित्त निमित्त संबंध इतने घने हैं, इतने घने हैं कि अनेक बार ऐसा होता है कि यदि उपकरण में या निवृत्ति में गड़बड़ हो तो वो ज्ञान नहीं जान पाता। नहीं जान पाता, उस तरह का ज्ञान नहीं कर पाता है, वो अलग तरह से कर पाएगा। जैसे समझिए ये जो हमारी चक्षु दिखाई देती है, ये जो कान दिखाई दे रहे हैं, किसी व्यक्ति के कान का पर्दा फट गया तो बताओ आप कान से सुनते हो कि ज्ञान से सुनते हो? ज्ञान से सुनते हो। पक्का? तो दोनों आपको बुलाकर दोनों कानों के अंदर वो कुछ सुई डालकर दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए। क्या अब हम कुछ कह रहे हैं आप सुन सकेंगे कि नहीं सुन सकेंगे? तो आप कान से सुनते थे कि ज्ञान से सुनते थे? क्या देखो ज्ञान से तो ज्ञान करते हैं, क्या कान से ज्ञान से ही सुनते हैं? सच्चाई तो यही है, सुनने का काम तो ज्ञान ही करता है, लेकिन उसमें सहयोगी निमित्त जिसे कहते हैं वो कान है। समझ आ रही है बात? तो ये द्रव्येंद्रियां भी इम्पोर्टेंट है, द्रव्येंद्रियों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि अकेले ज्ञान से ही सुनने की बात करेंगे तो एक इंद्रियों को भी सुनना चाहिए। वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि कान नहीं है, ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, कान नहीं है। दो इंद्रिय सुनते हैं कि नहीं?
नहीं,
नहीं सुनते। तीन इंद्रिय चींटी वगैरह मच्छर वगैरह? मैंने भाई हमने कई लोगों को देखा, कभी कभी क्या होता है बहुत अपने असावधानी से वो कोई ऐसे जो होते हैं ना बड़े बड़े ऐसे जीव कुछ तड़फड़ाने लगे, कॉकरोच एकदम तड़फड़ा रहा है, ये नमोकरण को सुनाने लगते हैं उसको। सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? सुनाना चाहिए। कितने इंद्रिय कान है उसके? कान तो नहीं है तो फिर सुनाऊंगे तो क्या होगा? सुनेगा किसी दिन मीटिंग अपने को अच्छा लगेगा, पर नमोकार मंत्र तो बोलने से आपको अच्छा लगता है तो उसके तड़पते समय क्यों बोलते हो? हमेशा बोलो आप यदि यदि नमोकार मंत्र बोलने से यू फील गुड, आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक की बात नहीं, सीरियस की बात कह रहा हूँ, यदि पंच परमेश्वरियों का स्मरण करने से आपको बेटर फील होता है तो हम पंच परमेश्वरियों का स्मरण हर समय क्यों नहीं करें? हम क्यों इंतजार करें किसी जीव के मरने का, तड़पने का या हमारी मौत का? लोग मौत का इंतजार करते हैं। लोगों को ये लगता है, देखो कई कहानियां हमने प्रथमानु योग में पढ़ रखी है, मरते समय कान में नमोकार मंत्र सुना दो ना तो उनकी गति अच्छी हुई। उनकी गति अच्छी नहीं, फिर वो वापस आता है कुछ हेल्प करने के लिए। वो जीवंदर कुमार एक राजा हुए हैं अपने यहाँ, उन्होंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, मर रहा था वो, तड़फ रहा था तो मर गया, नमोकार मंत्र सुनाते वो मर करके देव गति में चला गया। उसने वापस देखा, वापस लौट करके आ गया, विद्याएं दे गया कि रूप बदल सकते हो, आकाश मार्ग से उड़ सकते हो, चमत्कार से विद्या दे जाते हैं वो देव लोग। मतलब तो अपने को ऐसे लगते हैं अपने हिसाब से कुछ ऐसा हो जाए, वो देव बन जाए तो वापस लौट करके आ जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। अरे नहीं भाई साहब। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उसकी तो छोड़ो कोई बात नहीं, अपने मरते समय कान में कोई सुना दे तो अपनी गति समझ जाए, अंत भला तो सब भला, ऐसा बोलते हैं आपके यहां भी? मनोज भाई तो लिखने की तो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, नहीं आप लिख सकते हो कोई बात नहीं, या और कुछ लिख दो, और तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। धारणा कई बात नहीं, नहीं लिख लीजिए आप, मैं तो और बातें कर रहा हूँ, आप लिख लो, भूल गए होंगे लेकिन क्या लिख रहे अंत, आप जब भूल जाओगे लिख लो। अरे नहीं मैं सच में मैंने सोच दिया, अरे लिख लो आप जब तक नहीं लिखोगे मुझे लगेगा मैंने अंतराय कर दिया। अंत भला तो सब भला, तो इसलिए लाइफ कैसी भी बीती हो अंत में कोई आकर के कान में अड़मों का तंत्र सुना दे अपना तो उद्धार हो जाएगा। पंडित जी इतना बहुत है क्या रोज रोज का चक्कर पत्तन का रोज रोज का आई के प्रवचन का आई के सभा का आई का मंदिर पढ़ना पढ़ना एक दिन में अपना तो लास्ट में कोई क्योंकि बहुतों का भला हुआ है ऐसा अनोखा मंत्र सुनने से आपको भी करना है ऐसा भला मैं कर सकता हूँ हेल्प आपकी किसी भी कर सकता हूँ मैं यहाँ मयामी वाले लोगों से बहुत प्रीति है सब बहुत अच्छे लोग हैं बहुत हंसोगे बहुत हंसते हैं अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं सब। आप लोग यदि कोई भी चाहेंगे तो अंत समय में आपके समाधि मरण कराने के लिए आपको अंत समय में नमोकार मंत्र सुनाने के लिए मैं आ जाऊंगा टिकट का पैसा भी मैं दूंगा चिंता मत करना आप इससे अच्छा क्या हो सकता है मतलब इससे अच्छा क्या कह सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए अंत भला से सब भला इतना प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं सब सबको लग रहा है कि यार मेरे पास आ जाए सबको ऐसा लग रहा है लेकिन मेरी समस्या भी तो सुन लो मैं तो आया हुआ हूँ अभी निपटा लूंगा काम नहीं नहीं पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप क्या चाहते हो हम कोई मर जाएं अभी नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई बात तो नहीं मेरे इंडिया जाने के बाद में बता देना लेकिन मर कब रहे हो एक आध दिन पहले ही बताना कितने मैं राइट टाइम आ जाऊं क्या नहीं हो सकता है हमें पता नहीं है जीवन कब पूरा होने वाला है हमें मालूम नहीं है अंतिम सांस कब आएगी तो फिर क्या करें कि प्रति क्षण नमोकार मंत्र का स्मरण क्यों नहीं करता है पंच परमेश्वरों का ध्यान क्यों नहीं करता है उनके स्वरूप का विचार क्यों नहीं करता है क्यों उसके तड़पने से बेटर फील करने की बात करता है उसके तड़पने और उसको सुनाने से नहीं सदा काल यदि अच्छा फील होता हो डॉक्टर साहब तो हमेशा ही नमोकार मंत्र का जाप करना मन में भगवान का स्मरण रहे इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। चलो द्विविधानी दो प्रकार की थी इंद्रियां एक द्रव्य इंद्रिय और दूसरी भाव इंद्रिय निर्वृत्ति और उपकरण निर्वृत्ति मतलब तो संरचना ये क्या है निर्वृत्ति भी दो तरह की कह दी अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति ये सब इंटरनल चल रहा है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हाँ पौगोलिक रचना नहीं ये तो उपकरण है नीज अब सुनो तो दो चीजें हैं द्रव्य इंद्रिय के लिए एक निर्वृत्ति एक उपकरण पहले उपकरण देख लो उपकरण दो एक बाह्य उपकरण और एक अंतरंग उपकरण तो बाह्य उपकरण तो ये कान बाह्य उपकरण यदि काट भी दिया जाए तो भी सुनने में फर्क नहीं पड़ेगा यदि ये कान यहाँ से कट जाए मान लीजिए ऊपर से क्योंकि बाह्य उपकरण है आंखों के लिए बाह्य उपकरण है ऊपर की पलकें नाक यदि यहां से सामने से कट गई तो मरेगा नहीं क्योंकि अभ्यंतर उपकरण अब सुनने के लिए अभ्यंतर उपकरण है उसका पर्दा कान का पर्दा तो ये तो हो गए उपकरण अब बात करो निर्वृत्ति की बाह्य उपकरण अंतरंग उपकरण दो हो गए फिर बाह्य निर्वृत्ति क्या है कि वहां उस जगह पर पौद्गलिक संरचना अंतरंग में अंदर में माने इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी इंटरनल कुछ और सूक्ष्म परमाणुओं की संरचनाएं हैं वो है बाह्य निर्वृत्ति और उसके अंदर आत्म प्रदेशों के पास में पौद्गल प्रदेशों का आकार वो है अभ्यंतर निर्वृत्ति मतलब चार बातें हो गई एक तो आत्मा के साथ में जुड़े हुए कुछ पुद्गल वहां इंद्रियाकार पुद्गल फिर उन पुद्गलों की और संरचना ये दोनों तो हो गई निर्वृत्ति फिर अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण ये सब द्रव्य इंद्रियां हैं इन सबको द्रव्य इंद्रियों में शामिल किया माने पलकें फिर देखने वाला एक काला और सफेद हिस्सा ये तो उपकरण हुए ठीक है अब इसके बाद अंदर जो पर्दा है आपका और अंदर वो कहलाएगा निर्वृत्ति, और उसके अंदर चक्षु इंद्रियाकार आत्म प्रदेशों की संरचना वो भी द्रव्य इंद्रिय है। तो इस तरह से ये द्रव्य श्री की बात हुई निर्वृत्ति और उपकरण स्वरूप। आगे लब्धियोपयोगौ भावेन्द्रियम, लब्धियोपयोगौ भावेन्द्रियम। मैंने तो तोड़ करके पढ़ा है लब्धियोपयोगौ। पाठ पढ़ेंगे तो कैसा होगा, जोड़ देंगे लब्धियोपयोगौ और तोड़ दो तो लब्धि और उपयोग, ये सब भावेन्द्रिय है। इसका मतलब भावेन्द्रिय ज्ञान की पर्याय है, भावेन्द्रिय ज्ञान की पर्याय है। लब्धि और उपयोग क्या है, तो हम कहते हैं लब्धि जो है ये लब्धि है वही तो स्टोरेज है, धारणा जैसा लब्धि में पड़ा है, और उपयोग मतलब जो अप्लाई हो रहा है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एप्लीकेशन में जो है वो है उपयोग। और लब्धि जैसे अभी समझिए, अभी हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो उपयोग में चल रही है हिंदी, लेकिन हमें संस्कृत का ज्ञान भी है थोड़ा बहुत गुजराती, थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत प्राकृत, इन इन भाषाओं के ज्ञान भी है ना, वो कहाँ है लब्धि में। ऐसा थोड़ी ना कि साफ हो गया, आप इंग्लिश जानते हैं ना, तो वो कहाँ है, उपयोग में तो नहीं आ रही है, बोले लब्धि में है सब चीजें हैं। तो ये सब जो है ये भावेन्द्रिय है, लब्धि और उपयोग भावेन्द्रिय है। चलो आगे बढ़ो, नहीं ज्ञान की पर्याय। नहीं क्षयोक्षम ज्ञान में ही है, ज्ञान का ही स्टोरेज है। चलिए स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणी, 19 नंबर सूत्र, स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणी, स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणी, स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु और श्रोत्र, ये पांचों इंद्रियों के नाम बतला दिए सर, ठीक है ना। जिनको नहीं पता हो, मतलब उमा स्वामी आचार्य ने ऑप्शन नहीं किया पता है कि नहीं है, उन्होंने कहा मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम जान लो, है ना, पांचों इंद्रियों के नाम। तो इनके विषय वो नहीं पता हो तो वो भी बता देते, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास पदार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास पदार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास पदार्थ। स्पर्श पहला, फिर रस, ठीक है, फिर गंध, फिर वर्ण और फिर शब्द, मतलब तद अर्थ, ये इनके विषय है, ठीक है। जैसे स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय का विषय है स्पर्श, फिर रसना इंद्रिय का विषय है रस, ग्रहण इंद्रिय का विषय है गंध, और चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण, और श्रोत्र इंद्रिय का विषय है शब्द। क्लियर हो गया, कठिन तो नहीं है बात, देखो फिर आगे, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य, माने श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो क्या है, मन, मन का विषय श्रुत ज्ञान का विषय है। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान का विषय, श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ वो क्या है, मन का विषय, श्रुतम अनिंद्रियस्य। चलो 21 हो गए, अब 22, आमनस को शुद्ध ज्ञान होता है, लेकिन श्रुत जो है ना ये मन के विषय की बात कर रहे हैं, मन का विषय श्रुति ज्ञान है और श्रुति ज्ञान का विषय मन जो है वो मन का जो विषय होता है, मन में जो विषय चलता है वो श्रुति ज्ञान में चलेगा। असंगी जीवों के मन नहीं है, ठीक है ना, तो श्रुति ज्ञान तो है। इसलिए ऐसा समझो आप, पांचों इंद्रियों से श्रुति ज्ञान तो हो सकता है लेकिन मन से होने वाला जो होगा ज्ञान वो श्रुति ज्ञान ही होगा। क्या कहा? मन का जो विषय है वो श्रुति ज्ञान ही, बाकी इंद्रियों से भी होता और भी हो सकता है। हाँ, एक इंद्रियों के भी श्रुति ज्ञान है, दो इंद्रियों के भी श्रुति ज्ञान है, ऐसा सब कुछ। आगे बढ़ो, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, माने वनस्पति है अंत में जिसके, वो एक इंद्रिय जीव है। क्या वनस्पति जिसके अंत में है वो एक इंद्रिय है, वनस्पत्यंता नाम, वनस्पति जिसके अंत में है वो कैसा है? एकम, एक इंद्रिय जीव है। वनस्पति किसके अंत में है ये बताओ, वनस्पति किसके अंत में है? अरे सूत्र पढ़ा था अपन ने, पृथ्वी व तेजो वायु वनस्पति है सावरा, तो पृथ्वी और तेज वायु वनस्पति है, ये कहा था कि नहीं अपन ने? तो जहां तक वनस्पति की बात थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये वनस्पति जिसके अंत में था, ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं एकम, उन सबके एक इंद्रिय होती है। बोले साहब बाकी इंद्रियां किस किसके होती है? क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी, नाम एकैक वृद्धानी, क्रमी क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एकैक वृद्धानी। क्रमी मतलब होता है लट, क्रमी देखो वापस पढ़ो, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। क्रमी मतलब लट, पिपीलिका मतलब चीटी, फिर भ्रमर, भ्रमर मतलब भंवरा, फिर मनुष्य, ठीक है, आदि आदि के क्या कह रहे हैं, एक एक वृद्धानी, इन सबके एक एक इंद्री बढ़ गई। अभी समझाऊंगा मैं, करूंगा चर्चा इनके बारे में। माने दो इंद्री हो गया, सबसे पहले क्रमी हो गया लट, फिर पिपीलिका हो गया तीन इंद्रिय चींटी, आप पाठ करो इसका सूत्र बोलो, एक मिनट आया। क्या हुआ? हाथी कौन सा है बताओ, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। लायन क्या? लायन फंगी है? जिसके भी कान है उस देखो, ऐसा ऐसा समझ लो आप, मोटे मोटे जो जीव दिखते हैं ना वो तो संगी पंचेंद्रीय है। जितने मोटे मोटे जीव आपको दिखाई दे रहे हैं सब संगी पंचेंद्रीय, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी भेड़ कबूतर चिड़िया पक्षी जितने दिख रहे हैं आपको, चूहा मेंढक सब सब हिरण जिसका आपको नाम लग रहा है, ऐसे बड़े बड़े पक्षी दिख रहे हैं वो सब क्या है? सैनी पंचेंद्रीय, सब सैनी सबके मन है, सब सम्यक दर्शन ले सकते हैं। अच्छा गधा, गधा गधा भी सैनी पंचेंद्रीय। हाँ हाँ सब नाग भी सैनी पंचेंद्रीय है, मछली क्रोकोडाइल सब संगी पंचेंद्रीय है। कितने जीव संगी पंचेंद्रीय है बोलो आप, इसका मतलब वो सब जीव जो संगी पंचेंद्रीय है वे सब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, सब जीव तत्व को पारणामिक भाव तत्व को पहचान सकते हैं। दो इंद्रिय कौन? दो इंद्रिय के एग्जांपल बतलाओ। कृमि, कृमि तो मतलब समझते नहीं है, कृमि मतलब क्या होता है? यस भूख नहीं, पेट में जो हो जाते हैं, पेट में जो निकलते हैं समझ लो आप, डॉक्टर दवाई से निकल जाए मान लो ऐसे पेट के कीड़े, वो सब दो इंद्री। अच्छा, और खाने की वस्तुओं में जितने भी हो जाते हैं सब दो इंद्री। लटे हो जाती नहीं ये इंद्री, क्या कहते हैं जी, जीव जो हो जाते हैं चावलों में जो हो गए हैं, दालों में जो हो गए हैं, दो इंद्रिय हैं। या फिर समझ लीजिए आप ये अपने मटर है या एप्पल के अंदर कभी निकल गया, अमरूद में निकल गया है? वो सब दो इंद्रिय हैं। तो क्रमी तीन दो इंद्रिय जीव ऐसे जो जीव चल जिनके पांव नहीं होते, अभी मोटा मोटा समझना, देखो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको जीवों को पहचानने के लिए, क्योंकि एक तो आइडिया मैंने देखिए जितने बड़े बड़े जीव हैं वो तो पहले पंचेंद्रीय हैं, वो तो खत्म हो गई बात, इसलिए सर्प अजगर ये सब सैनी पंचेंद्रीय हैं। अब हम कह रहे हैं ऐसे छोटे छोटे से जीव जिनके पैर नहीं होते और रेंग कर चलते हैं और काटते नहीं है, वो सब दो इंद्रिय। तीन बातें कहती हैं, जिनके पांव नहीं हैं, रेंग कर चलते हैं, मटर में यदि कोई जीव निकला तो कैसे चलेगा, वो पांव है उसके, पेट के बल चलता है, काटता भी नहीं है, ठीक है, वो सब दो इंद्रिय। तीन इंद्रिय जीव भी होते हैं जो काटने लगते हैं लेकिन उड़ते नहीं है, चींटी है और खटमल है, मकोड़ा है, तीन इंद्रिय है और जुए है, तीन इंद्रिय है और बिच्छू है, और बिच्छू कंचले और क्या कल खजूरा काटते हैं ना, तीन इंद्रिय है, उड़ते तो नहीं है और तो तीन इंद्रिय है, नहीं स्पाइडर चार इंद्रिय थोड़ा बहुत, मतलब जहां उड़ने की ताकत आ गई वहां चार इंद्रिय हो गया। हाँ अरे क्या बात कर रहे हो, तो ऐसे वो बहुत ज्यादा ऐसे उड़ते नहीं है लेकिन वो उड़ने की सामर्थ्य है उनमें, ऐसे ही समझ लीजिए आप। अब उड़ने वाले कौन कौन से हो गए, तितली है, भौंरा है, कबूतर नहीं वो बड़े पंचेंद्रीय पंचेंद्रीय हो गए, हाँ मधुमक्खियां बी और क्या, हाँ मच्छर पतंगिया ये सब चार इंद्रिय हुए, बहुत सारे हुए। अब आप अभी किसी भी जीव के बारे में पूछे तो आप देख लेना, उड़ रहा है तो चार इंद्रिय हो गया, वो पक्षियों की नहीं, बर्ड्स की बात नहीं कर रहे, वो उड़ रहा है छोटे छोटे से हैं तो क्या समझ लेना चार इंद्रिय है, और लेकिन उड़ते तो नहीं है, और लेकिन काटते हैं तो तीन इंद्रिय है, चींटी हटमल जू इस तरह के जीव, वो सब तीन इंद्रिय है, और दो इंद्रिय जीव पेट से चलते हो गए सब, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार, और पंच इंद्रिय कौन है, बोले मनुष्य कह दिया उन्होंने एग्जांपल में, मनुष्य आदि नाम भ्रमर, देखो क्या क्या लिया, क्रमी लिया, फिर पिपीलिका मतलब चींटी लिया, फिर भ्रमर मतलब भंवरा है ना, भंवरा तितली मच्छर मक्खी ये सब, फिर मनुष्य आदि नाम, एक एक वृद्धानी, इन सबकी एक एक की बढ़ोतरी होती गई है, फिर संगीन है समनस्ता, संगीन है समनस्ता, संगीन है समनस्ता, मन वाले जीव उनमें एक प्रॉब्लम होती है, उनका मन कहीं भी इधर उधर चला जाता है, मन होता है ना, जिनका मन होगा वो इधर उधर दौड़ जाएगा, संगीन समनस्ता, एकदम मन वाले जीव संगी होते हैं, मन वाले जीव संगी होते हैं, क्या हाँ पर्यायवाची कह सकते, यह सामनस्त का लक्षण कह दिया, मन सही कौन होते हैं, संगी संगी कहते हैं, संज्ञा जो है ना ये गीता, इसकी परीक्षा करने का नाम है संज्ञा। चलिए आगे, फिर ये कहते हैं कि अच्छा तो ये जो मन होता है सब बात सही है, तो ये जीव एक गति से दूसरी गति में जाता कैसे, एक गति से दूसरी गति में कैसे जाता है, बिना मन वाले जीव कैसे चले जाते होंगे, जब मन नहीं होता है तो एक गति से दूसरी गति में जीव कैसे जाता है, पहली पंचेंद्रीय जीव को तो पता है कि हमें नरक में जाना है तो हम नरक में चले जाएंगे, असंगियों को कैसे पता लगेगा, दो इंद्रिय चार इंद्रिय पंच आगे दूसरे जीवों को कहाँ जाना है कैसे जाएंगे विग्रह गति में, तो आगे सूत्र दिया है 25, विग्रह गतौ कर्म योग है, विग्रह गतौ कर्म योग है, विग्रह गति में कारमाण काय योग होता है, विग्रह गति में एक कारमाण शरीर है एक अपना, उस कारमाण शरीर से गति होती है, आपको मालूम है कारमाण शरीर है, आप जानते, यदि आप नहीं जानते हो तो भोजन के बाद में दोबारा बैठना उपयोग एकाग्र करके, क्या क्योंकि अभी ये पूरा नहीं होगा महेंद्र भाई, नेक्स्ट सेशन में पूरा होगा ये, है ना, हाँ तो ये अभी ले भी है थोड़ा टाइम जितना भी है, क्योंकि टोटल है 53 तक है, अभी 25 पे चल रहे हैं अपन, आप देते हैं ना टाइम, ठीक है, कॉन्टेक्ट फेल तो नहीं करेंगे, कैंसिल तो नहीं करेंगे, तो नहीं यदि ऐसा हो तो मैं कर दूंगा पूरा या, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं पूरा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर जल्दीबाजी में जिस क्वालिटी का होगा वो निर्माण, वो क्या कह रहे हैं यहाँ, विग्रह गतौ कर्म योगे है, विग्रह गति में तो कर्म के योग होता है, कारमाण का योग होता है, माने ये जीव यहाँ से मर कर जब अगले भाव में जब जाता है दूसरे भाव में, तो कौन रास्ता दिखाता होगा, कैसे जाता होगा, कैसे सही जगह पर पहुंच जाता है, तो एक कारमाण नाम का एक काय योग है, कारमाण काय योग, काय मतलब होता है शरीर, कार्मिक शरीर है इस बॉडी के अंदर, जैसे कर्म शरीर कहते हैं उसको, उस कर्म शरीर के दम पर ये जीव चले जाता है, और कितने समय में पहुंच जाता है और कैसे जाता है, एक से तीन, ये आगे बता रहे हैं, आगे बताएंगे 28 में बताएंगे, अभी 26 कह रहे हैं अनुश्रेणी गति है, अनुश्रेणी गति है, तो साहब ये जो जाता है ये कैसे जाएगा हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा विग्रह गतौ कर्म योग, कर्म ले जाते हैं, तो चलता कैसे होगा, जाता कैसे होगा, कैसे ठिकाने पर पहुंचा होगा, जीपीएस कहां से आएगा उसके पास, रूट कौन बताता है उसको। बिना जीपीएस के तो हम ही घूम जाते हैं, इधर पे उधर चक्कर खा जाते हैं, तो कौन पहुंचाता होगा। बोले अनुश्रेणी गति आपको पता नहीं है। अनुश्रेणी का मतलब होता है रूट बने हुए हैं प्रदेशों के पूरे लोक में। आपको पता है कि एरोप्लेन चलते हैं ऊपर रूट पर चलते हैं, उनके रूट बने हुए हैं, आपको दिखता नहीं यार यहाँ का, मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये क्या रास्ता है, उनका रूट है। तो इसी तरह से श्रेणी के अनुसार ही गति होती है, इसका नाम है अनुश्रेणी गति। सूत्र क्या है, अनुश्रेणी गति। श्रेणी मतलब लाइन, श्रेणी मतलब पंक्ति, माने प्रदेशों की एक लाइन है, स्ट्रेट लाइनें ऐसे खींची हुई है, बिल्कुल ऐसे भी खींची हुई है, इस तरह से भी पूरे लाइनें बनी हुई है, उन लाइनों के अनुसार ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा जीव, अपने प्रदेशों की लाइन के हिसाब से ही गमन करेगा, आकाश के प्रदेशों की लाइन के हिसाब से। तो अनुश्रेणी गति हो गया। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, अविग्रह, विग्रह मतलब होता है शरीर, विग्रह माने होता है बॉडी, विग्रह गति किसे कहते हैं, विग्रह गति क्या होता है, शरीर के लिए जो गति हो उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह मतलब शरीर, यहां से शरीर छूट गया, अब दूसरा शरीर मिलना है, दूसरा शरीर धारण करेगा, तो इस शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करने के पहले रास्ते में जो गति होगी वो क्या कहलाएगा बेटा, विग्रह गति। ध्यान रखना विग्रह गति बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मजा आएगा ये समझ में आएगी तो बात। विग्रह गति अपनी हुई कि नहीं, विग्रह गति कभी बिना विग्रह गति की कैसे पहुंचेंगे। तो अविग्रह, अविग्रह मतलब विग्रह रहित, शरीर रहित जीवों की, बिना शरीर के लिए उनके क्या कह रहे हैं, जीवत्व मुक्त जीवों के, बोले ये नहीं होता, अनुश्रेणी गति नहीं होता, एक ही चीजें जाते हैं वो तो, क्या माने उन जीवों के जो मुक्त जीव हैं, उन मुक्त जीवों के श्रेणी के अनुसार ही मोड़ रहित गति होती है, सीधे गति होती है, डायरेक्ट चले जाते हैं मुक्त जीव। संसारी जीवों के तो अनुश्रेणी गति है क्या, और अविग्रह जीवों के, जीवस्य मुक्त जीवों के, संसारी जीवों के तो अनुश्रेणी गति है, और मुक्त जीवों के अविग्रह बिना शरीर के लिए सीधे गति होती है, मोड़ रहित गति है। विग्रह शब्द का अर्थ दो अर्थ किए जाते हैं शास्त्रों में विग्रह के, एक विग्रह शब्द का अर्थ हो गया शरीर, और दूसरा विग्रह शब्द का अर्थ किया जाता है मोड़। तो अविग्रह का मतलब बिना मोड़, बिना मोड़ वाली गति। जब जीव मुक्त होते हैं, जब जीव परमात्मा बनते हैं, तो मोड़ मुड़ता नहीं है, जहां बैठे हैं। आपको पता है तमेश शेखर जी की इतनी महिमा क्यों है, तो वहां से मोक्ष गए, इसका मतलब वहां से मोक्ष गए तो क्या हुआ, अरे जहां से मोक्ष जाएंगे ना वहीं बैठेंगे सीधे ऊपर जाकर। तो आप तमेश शेखर जी पर जाकर, ये कहां की रचना है, पालिताना जी, शत्रुंजय जी, आप शिखर जी पर जाकर, वहां से भी बहुत जीव मोक्ष गए हैं, क्या पालिताना से भी बहुत जीव मोक्ष गए हैं, छोटे छोटे ऐसे ही जिस जगह पर जीव ने बैठ करके तपश्चरण किया वहां से सीधा ऊपर स्ट्रेट चला जाता है, ऊपर जाकर के विराजमान हो जाता है, टच हो जाता है, सर सबके बराबर होते हैं, पैर ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा है। चलो आगे, समेत शिखर जी का, समेत शिखर जी का महत्व ये है कि वहां से वर्तमान अपने 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, 120 तीर्थंकर मोक्ष गए, इसके अलावा असंख्यात जीव उनके साथ साथ में, उनके आगे पीछे इस चौथे काल में, इतना ही नहीं भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी अनगिनती जीव मोक्ष जाने वाले हैं और जा चुके हैं उस जगह से। वो एरिया ऐसा है कि उस एरिया के ऊपर यदि अगर आंख करके देखो और भाव पूर्वक देखो तो अनंत सिद्ध बैठे हुए नजर आएंगे, सिद्ध भगवान। वो सिद्ध भगवान एक में एक चले जाते हैं, ऐसा है। चलो अपन तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कितना टाइम लगता है यहाँ से? यदि हमें नरक में जाना होगा तो कितना टाइम लगेगा पंडित जी? इंडिया से आप यहाँ आए हो तो आपको कितना टाइम लगता है? 24 घंटा तो मिनिमम लगता है, मिनिमम है साहब। मैं इंडिया से अपने घर से निकल करके और यदि यहाँ महेंद्र भाई के घर तक आने का टाइम लगाऊं तो 45-50 घंटे लग जाते हैं। क्या जयपुर से आते हैं ना, तो जयपुर से आते हैं वो टाइम भी लेना पड़ेगा, फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है तो फ्लाइट शुरू होने के पहले 3 घंटे पहले पहुंचना है और उसके 6 घंटे पहले निकलना है, वो सारा टाइम लगेगा कि नहीं? तो अभी ये यहाँ से अपने को यदि त्रियंश में जाना है, देवगति में जाना है, नरक में जाना है तो कितना टाइम लगता होगा? एक समय। देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अपन तो स्वामी आचार्य के शिष्य भैया, इनकी बनेंगे अपन तो, आपसे नहीं बने। विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुर्भ्य है, विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुर्भ्य है, विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुर्भ्य है। क्या कहा? 4 समय के पहले पहले, प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने 4 के पहले पहले, विग्रहवती माने संसारी जीवों के, शरीर वाले जीवों के गति, क्या मतलब और संसारी है संसारियों के, क्या ये 1, 2, 3 और 4 समय लगते हैं मैक्सिमम? 4थे में तो जन्म हो जाता है, 4थे में तो शरीर मिल जाता है, 1, 2 और 3 बस 4 समय है अधिकतम। यहां से लेकर यहां पहुंचना है, उस जगह पहुंचने तक रास्ते में अधिकतम 4 समय लगते हैं, 1, 2, 3 और 4 समय लगेंगे। याद हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया? समय का मेजरमेंट मैं कैसे बता सकता हूँ? समय का मेजरमेंट बतलाने के लिए समय नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन समय का मेजरमेंट यदि मैं बतलाऊं, अरे क्या कहें क्या कहें, चलो 1000 असंख्यात है, असंख्यात है, मैं इतना ही बता दूं। 1 सेकंड में संख्या 1000 कूड़ा कूड़ी आवलियां होती है, 1 सेकंड में संख्या 1000 कूड़ा कूड़ी आवलियां होती है, और एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। 4थे नंबर का असंख्यात है, छदमस्त के ज्ञान का एक असंख्यात समय छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञानियों का विषय। 4 समय में पहुंच जाता है, बहुत कम समय है। 1 समया विग्रह, 1 समया विग्रह, 1 समया विग्रह माने अविग्रह। अविग्रह जीव कौन से हैं? वही मुक्त जीव है या मोड़ रहित, जिनको मोड़ नहीं लेना है, वो एक ही समय में पहुंच जाते हैं। 1 समया विग्रह, जिनको मोड़ नहीं लेना है वो जीव एक समय में ही पहुंच जाते हैं। मोक्षगामी तो होते ही है, अदर देन मोक्षगामी भी हो सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं और मुझे मर करके सीधा आपके शरीर में जन्म लेना है, समझ लो, आप सीधे हो ना सामने, तो बिल्कुल मोड़ नहीं लिया, यहाँ से सीधा जाकर के यहाँ भरा क्या और सीधा आपके शरीर में जाके जन्म ले लिया। एक समय दो, यदि एक मोड़ लेगा समय, दो मोड़, एक दो मोड़ यदि लेगा तो 3 समय, और 3 मोड़ लेगा तो 4 समय। 3 मोड़ के अंदर व्यक्ति अधिकतम पहुंच जाता है, यहाँ भी उसको पहुंचना होता है। अच्छा, रास्ते में ट्रेवलिंग के अंदर कोई नाश्ता वगैरह कोई खाने पीने की कुछ तो होती है, भूख लगे तो क्या? शरीर तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई कुछ तो व्यवस्था होती होगी, कहीं तो कहाँ से जाकर के शुरू करेगा भाई, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कब से शुरू हो जाती है, बैठते ही शुरू नहीं होती फ्लाइट में भी थोड़े समय बाद, कि कब, साथ में भी आप खोल नहीं सकते हो जब तक वो प्रॉपर वे में ऊपर चढ़ करके ऐसे नहीं हो जाएगा ना, क्या तब तक आप नहीं खोल सकते हो। तो यहाँ बताते हैं उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं विग्रह गति में क्या स्थिति है, एकम द्वो त्रीन वाना हारत्य है, एकम द्वो त्रीन त्रीन अनाहारक है, एकम द्वो त्रीन वा अनाहारक है, एकम द्वो तीन वा अनाहारक है, मतलब एक दो और तीन समय तक, एक दो अथवा तीन समय तक ये भूखा रह लेता है, अनाहारक अनाहारक। और अथवा लगाया है यहाँ, माने इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि किसी जीव को एक ही समय में जन्म लेना है तो फिर ये जीव अनाहारक नहीं होगा, इसके कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता रहेगा। यदि उसको दो समय में पहुंचना है तो पहले समय तो वह अनाहारक रहा और लास्ट समय में वह आहारक हो गया, ठीक है। किसी जीव को तीन समय में पहुंचना है तो दो समय तो वो अनाहारक रहेगा और तीसरे समय लास्ट समय में वो परमाणुओं का ग्रहण करना शुरू कर देगा। किसी जीव को चार समय में पहुंचना है तो एक दो और तीन समय तक अनाहारक रहेगा, चौथे समय में वो जीव आहारक हो जाएगा। तो क्या भोजन करता होगा, काय का आहार होता है बीच में, कि कर्म वर्गणाओं का, नौ कर्म वर्गणाओं का, औदारिक वैक्रियक शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं, आहार है ये। आप जानते हैं आहार क्या चीज है, कौन से आहार की बात है, ये जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ये आहार नहीं है, इस आहार से जीवन नहीं चलता है भाई साहब, क्या असली आहार तो वो होता है प्रति समय हम पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण कर रहे हैं। महेंद्र भाई यहाँ बैठे बैठे भी, यहाँ बैठे बैठे भी आहार कर रहे हैं आप, आहार हो रहा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है, बैठे बैठे अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है और निकल भी रहे हैं। जब ग्रहण करने वाले परमाणु ज्यादा होते हैं और निकलने वाले कम होते हैं तो वजन बढ़ जाता है, भारी हो गया। और जब निकलने वाले परमाणु ज्यादा होते हैं, बॉडी से निकल रहे हैं परमाणु और ग्रहण कम करने में आते हैं तो फिर वेट लॉस हो जाता है, समझ में आ रही है। ये जीव परमाणुओं का ग्रहण और परमाणुओं का त्याग निरंतर करता रहता है, इसलिए आपका यहाँ बैठे बैठे भी भोजन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि आपके भोजन में अंतराय इसलिए आप सभी भोजन के लिए उठ करें।